الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. کیا پاؤں عورت کی ستر ہے؟ اس بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک عورت کے پاؤں بھی ستر ہیں. فقہ احناف کے نزدیک اس میں تین رائے ہیں. پہلی رائے تو یہی کہ پاؤں بھی عورت کے ستر ہیں، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے. ائمہ ثلاثہ سے مراد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. یہ قاضی ابو بکر الجساس کی رائے احکام القرآن میں، اسی طرح قاضی خان کی رائے بیان ہوئی ہے. شیخ غنیمی کی رائے بھی اللباب میں اسی طرف راجے ہے. اور ان ائمہ کی دلیل ابو داود شریف کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجاریہ اذا حاضت لم يصلح ان یرا منها الا وجهها ویدها الى المفصل، کہ یعنی جب لڑکی بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس سے کچھ دیکھا جائے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے ہاتھوں کے جو کلائی تک، مفصل کے معنی جوڑ کے ہیں، کلائی کے جوڑ تک. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چہرے کا اور ہاتھ کا کلائی تک استثنا کیا ہے اور پاؤں کا استثنا نہیں کیا، گویا وہ بھی ستر میں شامل ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ پاؤں ستر نہیں ہے، یعنی ان کا ہر وقت چھپانا واجب نہیں ہے، جیسے ستر کو چھپانا ہوتا ہے. اور یہی مفتا بھی قول ہے، یعنی زیادہ اصح قول، زیادہ صحیح قول جس پر احناف نے فتویٰ دیا ہے وہ یہی ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت جو سورہ نور میں آئی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ نہ دکھائیں اپنا حسن اور جمال، زینت، مگر صرف ان چیزوں میں کہ جو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں. اس سے مراد چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلی لی جاتی ہے کہ یہ ستر گویا نہیں ہے. لیکن جب یہ ستر نہیں ہے تو پاؤں، تخنے سے نیچے تک کا جو پاؤں ہے، قدم جسے کہتے ہیں، یہ اس بات کا زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ ستر نہ ہو، اس لیے کہ اس میں بھی مشقت ہے. چہرے کو اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ستر قرار نہ دینے کی وجہ مشقت ہے کہ ہاتھ سے کام کرنے ہوتے ہیں. چہرے پہ اگر کور رہے گا تو ہر وقت کام کرنا گھر کے اندر بھی مشکل ہوگا، باہر نکلنا بھی مشکل ہوگا، گھر میں کوئی بھی آئے گا تو چہرہ چھپانا پڑے، محرم ہو جانا محرم، کیونکہ ستر کا اگر حصہ بن جائے تو بہت مشقت ہوگی. اس میں بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں بات ستر کی ہو رہی ہے. ستر سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ چیز عورت کسی اور مرد کو، کسی اور انسان کو دکھا سکتی ہے کہ نہیں ہے. تو اگر یہ ستر میں شامل ہوگی تو ظاہری بات ہے مشقت ہوگی، ہاتھ کی ہتھیلی یا چہرہ. تو جب یہ دونوں چیزیں مشقت کی وجہ سے ستر نہیں ہے تو اسی طرح پاؤں کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے. کہ عورتیں بالخصوص اس زمانے میں ہر وقت جوتے پہن کے نہیں چلتی تھیں، ہر ایک کے پاس جوتا اویلیبل نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی وہ ننگے پیر باہر جاتے کام وام اگر کرنا پڑتا، یا اگر جوتا مل گیا تو بس وہ اتنا ہی ہے جیسے کہ چپل جیسا حصہ، تو اوپر کا جو حصہ ہے قدم کا وہ اس میں ڈھکتا نہیں. اور اسی طرح اس میں کوئی شہوت کا پہلو نہیں ہے کہ کوئی شخص جس طرح چہرے کو دیکھ کر شہوت میں مبتلا ہو سکتا ہے، پاؤں کو دیکھ کر کسی کو شہوت عام حالات میں نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جب چہرے کو کھولنے کی اجازت ہے مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے، تو قدم کو کھلا ہوا ہونا زیادہ بدرجہ اولا گویا اس کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ رائے امام حسن بن زیاد نے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے بیان فرمائی ہے، گویا احناف کے بڑے امام ہیں امام حسن بن زیاد، ان کی رائے یہ ہے. اسی طرح امام کرخی جو ایک اور بڑے حنفی امام ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے. और इस हदीस से भी इस्तदलाल किया है जो इमाम इब्न अबी हातिम ने बयान फरमाई है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आयत की शरह में कि वो अपने हुस्न में से जीनत में से कोई चीज़ न दिखाएं मगर वो जो कि ख़ुद ज़ाहिर हो जाती हो, इससे मुराद पाँव की उंगलियों में जो छल्ले पहने जाते हैं उससे किया है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि ये वो जीनत है कि जो औरतें कभी उंगलियों में छोटा एक छल्ला एक दो में पहन लेती हैं टोज़ में, तो उसको कहा है कि वो जब चूँकि ऐसे चलते फिरते में नज़र आ जाता है तो उसको उन्होंने फरमाया कि ये इस्तिस्ना है कि ये तो मजबूरी है, चलते फिरते में नज़र आएगा ही। तो जब वो नज़र आएगा तो ज़ाहिर बात है उसके साथ पाँव का ऊपर का हिस्सा भी कुछ ना कुछ नज़र आएगा। तो इसको सामने रखते हुए हनाफ ने इस बात को ज़रा ज़्यादा राजह करार दिया है कि औरत के सतर में ये शामिल नहीं है। और तीसरी राय ये है कि पाँव ये नमाज के अंदर सतर नहीं है लेकिन नमाज के बाहर सतर है, यानी नमाज में इनका छुपाना ज़रूरी नहीं है, नमाज के बाद नमाज के अलावा आम हालात में छुपाना चाहिए। ये राय अल्लामा इब्ने आबिदीन ने ली है, इमाम शामी जी ने कहते हैं रहमहुल्लाह, और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की भी यही राय है। बहरहाल खुलासा कलाम ये कि तीन आइम्मा के नज़दीक और अहनाफ की एक राय के मुताबिक पाँव भी सतर है, इसलिए उसको छुपाना चाहिए नमाज में भी और नमाज के अलावा भी। और इसकी एक और दलील जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की अबू दाऊद वाली हदीस भी है कि जिसमें फरमाती है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरत की नमाज के हवाले से सवाल किया कि अतुसल्लिल मरअतु फी दिरइन व खिमारिन लैसा अलैहा इज़ार, कि क्या औरत नमाज अदा कर सकती है एक चादर जो उसकी सीने से लेकर नीचे तक हो और एक ऊपर हो सर को कवर करने के लिए, लेकिन कोई नीचे जो शलवार की जगह है उस तरफ कोई चादर उसने न पहनी हो, ऊपर दो चादरें उसके पास हों, तो क्या उसमें महज इन दो चादरों में वो नमाज अदा कर सकती है? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ, इदा कान दिरउ साबिगन युगत्ती ज़ुहूर क़दमैहा, यहाँ तक के वो चादर जो उसने अपने सीने से नीचे तक पहनी ओढ़ी हुई है वो इतनी लंबी हो कि वो पाँव के ज़ाहिर को दोनों कदमों के ज़ाहिर जो ऊपर का हिस्सा है उसको कवर कर ले, उस तक पहुँच जाए। तो इससे भी मालूम हुआ कि दोनों कदम छुपाना ये भी सतर में शामिल है नमाज के अंदर बिलखसूस या नमाज के अलावा, क्योंकि इस हदीस के अंदर तो उमूम आ गया है। लेकिन चूंकि मशक्क़त होती है और क़ुरान की आयत के अंदर इस तरफ इशारा है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मा वहरा मिन्हा की जो शरह की है उसमें पाँव का इस्तिस्ना महसूस होता है, इसलिए अहनाफ ने मजबूरी की वजह से लोगों की औरतों की मशक्क़त को दूर करने की वजह से उनके लिए आसानी हो जाए इस वजह से ये गुंजाइश निकाली और इसी को ज़्यादा राजी करार दिया। और बिलखसूस इस वजह से भी कि पाँव को देखकर उमूमन बदमाशों और ओबाशों के भी कदम नहीं फिसलते। तो ये एक मसला है जिसमें आइम्मा का ये इस तरह से इख्तिलाफ़ है। लेकिन ये ख्याल रहे कि चेहरे के औरत ना होने और उसको देखने के जायज़ होने में, इसी तरह पाँव के औरत ना होने में और उसके देखने में जायज़ होने में तलाज़ुम नहीं है। यानी शहवत की नज़र से अगर कोई पाँव की तरफ भी देखेगा तो जिस तरह चेहरे को देखना नाजायज़ होगा उसी तरह पाँव को देखना भी नाजायज़ होगा अगर किसी में ऐसी बीमारी मौजूद हो। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि औरतें अपने पाँव को छुपा के निकलें, घर से बाहर निकलें जितना ज़्यादा मुमकिन हो, क्योंकि यही ज़्यादा मशहूर राय है, अक्सर के नज़दीक यही राय है। और गुंजाइश एक अलग मसला है, घर के अंदर पाँव खुले हों एक अलग बात है, लेकिन बाहर एहतमाम करना चाहिए और नमाज में इख्तियार है, चाहे तो पाँव छुपाएँ चाहे न छुपाएँ। लेकिन जो लोग छुपाते हैं कम से कम उन पर तान न करें, उन्हें ये न कहें कि वो तशद्दुद कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या वो औरतें बिला वजह एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ा के कर रही हैं, दीन में अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ईजाद कर रही हैं और ज़रा ज़्यादा ही दीनदार बनने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बातें जो हमारे यहाँ लोग कह देते हैं, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए कि अक्सर के नज़दीक यही सही राय है, और अहनाफ की भी एक राय यही है। और मजबूरी में एक चीज़ की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं है कि उसको असल बना दिया जाए और उसकी बुनियाद पर बाकी चीज़ों को गलत करार दिया जाए। ये राय अहले सुन्नत वल जमा के नज़दीक ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा मकबूल है, तो इसलिए, और सेफ़ भी यही है, तो इसीलिए इस पर अमल करने में ज़्यादा आफ़ियत है। तो अल्लाह सुबहान व तआला अमल की तौफीक भी दे, या कम अज़ कम जिनको किसी वजह से इस पर अमल नहीं करना वो दूसरों पर तान ना करें। ये समझें कि हम एक गुंजाइश से फ़ायदा उठा रहे हैं, एक रुख्सत से फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो दूसरे माशाल्लाह इस्तेकामत से कर सकते हैं काम, उनको देख के खुश हों कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको तौफीक हो रही है, अल्लाह हमें भी कभी तौफीक दे। और जो करते हैं वो जो नहीं करते उनके बारे में भी मनफी जज्बात न पालें अपने दिल में कि ये देखो पाँव खोल के चल रहे हैं। पाँव खोलने से मुराद ये कि खाली कदम का जो हिस्सा है, तो ऐसी खवातीन को तान न किया जाए, अपने बारे में ज़रा ज़्यादा अच्छा गुमान न रखा जाए, तो फिर ये अजुब और तकब्बुर की अलामत होगी। इसलिए अपने बारे में बहुत ज़्यादा खुशगुमान होने की भी ज़रूरत नहीं है, दूसरों को तंज व तान करने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम समझें दीन के मिजाज को और उसके मुताबिक अपने अपने तकवा के मुताबिक अपनी अपनी इस्तेदात के मुताबिक अमल करें, और अल्लाह से इस्तेआनत मांगते रहें, मदद मांगते रहें, और डरते रहें कि वल्लदीना युतूना मा आताउ व कुलूबुहुम वजिला, कि वो जो अल्लाह ने उनको दिया सब अल्लाह की राह में लगा देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, सारी जितना उनके पास इस्तेतात और सलाहियतें लगा देते हैं अल्लाह की राह में, माल हो या जान हो, सलाहियतें हो या वक्त हो, इसके बावजूद डरते रहते हैं, दिल उनके डरते रहते हैं कि पता नहीं ये अमल कबूल होगा कि नहीं, पता नहीं मैंने सही तरीके से किया है कि नहीं। इस एहसास के साथ जब चलते हैं तो आगे मज़ीद तरक्यात भी होती हैं, क्योंकि कबूलियत तो सिर्फ़ अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत पर मौकूफ़ है, उन्हीं की तौफीक से तो हम सारे काम करते हैं। तो अल्लाह सुबहान व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।